है लाखों रहमत
भी बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे थे, है ना? और सुबह भी आपने अपना परिचय प्राप्त किया था, तो जो परिचय प्राप्त किया उसका ही अभ्यास कर रहे थे। तो थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि हमने क्या सीखा, क्योंकि अभी का जो लेसन है वो है परमात्मा की पहचान। लेकिन कहते हैं जब खुद को जान लेते हैं तो खुदा को जानना आसान होता है, आत्मा को जब समझ लेते हैं तो परमात्मा को समझना आसान हो जाता है। इसलिए जो आज हमने सुबह में खुद को जाना, आत्मा की पहचान प्राप्त की, थोड़ी सी उसके रिवीजन, ताकि परमात्मा समझना इजी हो जाए। तो बोलो क्या सीखा, कौन हूँ मैं आत्मा हूँ, कैसी आत्मा हूँ, कैसी दिखती हूँ मैं, क्या है मेरा रूप, ज्योति स्वरूप मेरा रूप है, क्या है मेरे गुण, शांति प्रेम ज्ञान शक्ति आनंद प्योरिटी, ये सब मेरे गुण हैं। और क्या देखा, क्या है मेरा धाम, परम धाम, क्या है मेरा काम, मेरा धाम वो है, मेरा काम है वहां से नीचे आना, आने के बाद वो करना है, नहीं, धाम में हम रहते हैं, वहां आने के, वहां से जब नीचे आते हैं तो क्या थे मेरे ओरिजिनल संस्कार जो आपने बताए, वो ओरिजिनल संस्कार लेकर आत्मा नीचे उतरी एज एन एक्टर। एक्टर जब तक कॉस्ट्यूम नहीं पहने, जब तक स्टेज पर नहीं आए, उसके अंदर की कला को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो आत्मा के पास भी वो गुण है, वो कला है, वो पोटेंशियल है, वो टैलेंट है, जब वो परमधाम में है, लेकिन एक्सप्रेस करने के लिए उसको नीचे आना पड़ता है, कॉस्ट्यूम पहनना पड़ता है, और उस कॉस्ट्यूम को पहनने के लिए माँ के गर्भ में जाना पड़ता है, और उस कॉस्ट्यूम पहनकर जब निकलती है उसको कहते हैं जन्म। तो आत्मा का काम है अपने उस ओरिजिनल संस्कार को एक्सप्रेस करना, लेकिन कब, जब जन्म लेगी, और जन्म लेगी तो फिर एक्टर एक ही कॉस्ट्यूम पहनकर तो सारा समय एक्टिंग नहीं करेगा ना, है ना। तो उसको कहा कि आत्मा जन्म लेती है और कुछ काल तक उसी कॉस्ट्यूम के द्वारा एक्टिंग करती है, एक्सप्रेस करती है अपने संस्कारों को, और फिर वो कॉस्ट्यूम छोड़कर नया एक कॉस्ट्यूम लेती है, तो जो पुराना कॉस्ट्यूम छोड़ती है उसको कहते हैं मरण। तो हम क्या कह सकते हैं, आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती है, क्योंकि आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती है, इसका मतलब एक शरीर लेकर दूसरा, वो छोड़कर फिर दूसरा लेती है, मतलब शरीर भले विनाशी है लेकिन आत्मा अपने आप में अजर अमर अविनाशी है। उसके होने से शरीर जिंदा महसूस होता, उसके न होने से शरीर डेड महसूस होता, चैतन्यता उस आत्मा में है, आत्मा चैतन्य शक्ति है। और चूंकि आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, एक्टिंग करना माना ही कर्म करना, और एक बार जन्म मरण के चक्कर में आई, मतलब माँ के गर्भ में गई, बच्चे के रूप में पैदा हुई, उससे ऊंचा कोई है, माता पिता ऊंचे होंगे ना, फिर वो स्कूल जाएगी, टीचर मिलेगा, गुरु मिलेगा, प्रोटेक्टर रक्षक, ये सब क्या होते हैं, उनका स्थान हमेशा ऊंचा होता है। तो आत्मा से ऊंचा कोई है, आत्मा से ऊंचा कोई है। फिर आत्मा कर्म करती है, तो कर्म करेगी तो कर्म फल भी आएगा, माना आत्मा कर्म और कर्म फल के चक्कर में आती है, और कर्म किया तो किस प्रकार का कर्म किया उसके अनुसार सुख और दुख के चक्कर में आती है, पाप और पुण्य के चक्कर में आती है। ये थी थोड़ी सी रिवीजन आत्मा के बारे में, कि आत्मा अजर अमर अविनाशी शक्ति है, चैतन्य शक्ति है, स्वरूप उसका ज्योति है, रहने वाली परम धाम की, वहां से आती नीचे, माँ के गर्भ में जाकर कॉस्ट्यूम पहनती, इसलिए उससे ऊंचा कोई और है, वो सर्वोच्च नहीं है, उससे ऊंचा कोई और है, और कॉस्ट्यूम पहनकर रंगमंच पर एक्टिंग कर रही, कर्म कर रही, मतलब कर्म और कर्म फल के चक्कर में आ रही, सुख दुख में आ रही है, पाप पुण्य में आ रही है। अब हमें परमात्मा का परिचय प्राप्त, और गुण भी देखे जो आपने रिपीट किए सारे, आत्मा में गुण है, वही तो टैलेंट है, उसी को तो एक्सप्रेस करने आई है। तो पांचों बातें हो गई हमारी परिचय की। अब परमात्मा क्या है, क्योंकि कहा खुद को जानेंगे तो खुदा को जानना आसान। क्यों ऐसा कहा, क्योंकि आत्मा और परमात्मा, जब हम कहते हैं परमात्मा, परमात्मा मतलब परम प्लस आत्मा, मतलब वो भी एक आत्मा है लेकिन वो परम है। अब परम है माना क्या, बोलो। परम माना ऊंचा, दुनिया के अंदर भी कोर्ट होती है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट, चलो वहां नहीं बात बनी तो इसे ऊंची कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट, वहां पर भी बात नहीं बनी तो, वहां बात नहीं बनी तो, नहीं दुनिया की बातें कर रहे हैं अभी, वो ऊंचा है, अब उससे ऊंचा कोई नहीं। ऐसे जब परमात्मा कह रहे हैं, हर आत्मा में वो ऊंची आत्मा है, और इसका मतलब जैसे का आत्मा ने जन्म लिया तो उससे ऊंचा कोई हो गया, लेकिन वो ऊंचा है परम, उससे ऊंचा कोई नहीं हो सकता है। इसका मतलब वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, और चूंकि जन्म मरण के चक्र में वो परमात्मा नहीं आती, तो न कर्म और कर्म फल के चक्र में, इसलिए कहते हैं उसको वो क्या है, अकर्ता है, अभोक्ता है। और चूंकि जन्म नहीं लेती है तो वो कॉस्ट्यूम नहीं पहनती, वो आत्मा परमात्मा वो अव्यक्त है। गीता में ये सब बातें आती है, वो अजन्मा है, जन्म नहीं लेता, और जन्म नहीं लेता तो ऐसा दैहिक स्वरूप भी नहीं मिलता, तो वो अव्यक्त है। और चूंकि जन्म ही नहीं लिया, ऐसा दैहिक स्वरूप ही नहीं लिया, उस प्रकार का कर्म भी नहीं किया, और फिर उसको कर्म फल को भोगा भी नहीं, तो वो क्या है, अकर्ता है, वो अभोक्ता है, वो सर्वोच्च है। तो वो सर्वोच्च तो है, और क्या है, आत्मा, वो भी एक आत्मा है, तो आत्मा ज्योति स्वरूप वो भी कैसी होगी। लेकिन उसको कहा कि परम है, तो अब क्या अंतर होगा उसमें और मेरे में, ज्योति स्वरूप में आत्मा भी, वो आत्मा भी ज्योति, मैं भी दिव्य हूं, आत्मा अपने आप में डिवाइन है, क्या अंतर होगा, बोलो बोलो, चिंतन चलाओ। नहीं तो आज दिन तक हम सत्वचन सत्वचन करके आए और परस्पर विरोधी बातों को ले लेकर जी रहे हैं, और कंफ्यूजन में सारी उम्र निकल जाती है। सोचो सोचो क्या होगा। नहीं, चमक को लेकर अभी बात चल रही थी कि मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूं और वो भी आत्मा ज्योति स्वरूप है, लेकिन वो परम है, तो क्या अंतर। देखो, वो भी ज्योति स्वरूप, मैं आत्मा भी ज्योति स्वरूप, लेकिन परम, परम माना क्या हुआ, हम पहले इसको डिफाइन करके, वो अजन्मा है, जन्म ही नहीं लेगा तो बैटरी डिस्चार्ज कहां से होगी। हमने तो जन्म लिया ना, मोबाइल में बैटरी डाली गई, बैटरी यूज होने लगी, उसकी डिस्चार्जिंग शुरू। अब वो आत्मा जन्म ही नहीं लेती है, वही तो बात कर रहे हैं। इसलिए हमारी जो चमक है धुंधली पड़ गई। इसलिए आज चेहरों में चमक कहाँ रह गई है? ब्यूटी पार्लर का सहारा लेना पड़ता है। देवी देवताओं के चेहरे तो देखो, सिर्फ उनका चेहरा नहीं चमक रहा है। डबल ताज, एक रत्न जड़ित ताज और दूसरा पवित्रता का, वो क्या है? लाइट। आत्मा चूंकि अभी अभी उतरी है प्योर, तो पूरा वो रेडिएट कर रही है। लेकिन हम तो कितना लंबे समय से सृष्टि रंगमंच पर, तो आत्मा ने अपनी चमक क्या कर दी? परमात्मा की ज्योति हमसे ज्यादा पावरफुल, एक तो परम, और वो कांस्टेंट बनी रहेगी। हमारी कांस्टेंट नहीं है, हमारी कांस्टेंट नहीं है। हमारी आए थे जगमग जगमग ज्योति करके आई थी आत्मा, लेकिन आज तेज खत्म हो गए ना चेहरों के, खत्म हो गए ना, क्योंकि जो अंदर है वही तो बाहर आएगा। इस कमरे में बत्तियां जल ही नहीं रही हो तो बाहर से कोई देखेगा तो प्रकाश दिखेगा क्या उसको? लेकिन अगर जल रही हो तो दिखेगा ना। अंदर में वो बत्ती जो है, वो प्रकाश जो है, वो ज्योति जो है, चमक ही नहीं रही है तो बाहर कहां से आएगी लाइट? वो आगे और देखेंगे हम। तो अंतर देख रहे थे आत्मा और परमात्मा का। दूसरा, आत्मा की क्या क्वालिटीज बताई? प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप। सेम गुण उसमें भी होंगे क्योंकि वो भी आत्मा है, लेकिन वो परम है। तो वही गुण उसमें कितने होंगे? इंटेंसिटी ज्यादा, जिसके कारण इसको कहा पावर हाउस। इंटेंसिटी उसकी ज्यादा, और दूसरा वो इंटेंसिटी उसकी कांस्टेंट रहेगी। हमारी हैप्पीनेस इंडेक्स दिन ब दिन कम हुआ है ना, अचानक से कम थोड़ी हुआ है, धीरे धीरे कम हुआ है ना। अचानक से आज डिप्रेशन रेट थोड़ी बढ़ा है। टेंशन आया था पहले, फिर स्ट्रेस में बदला, फास्ट डिप्रेशन में बदला, ऐसा ही हुआ है ना। तो उसकी जो गुण है वो सागर जितनी, जैसे बल्ब है ना, एक 10 वोल्ट का, 1000 वोल्ट का, देंगे दोनों लाइट पर उसके तेज में अंतर होगा। और दूसरा वो कांस्टेंट, क्योंकि जन्म नहीं ले रहा है ना, कांस्टेंट। और मैं आत्मा वहां की रहने वाली, और मैं उसकी परम आत्मा, वो भी आत्मा है, वो भी कहां रहेगा? अपना पता चला ना, हम परम धाम में है, वो भी कहां होगा? परम धाम में होगा। तो कितनी बातें पता चल गई परमात्मा की, बोलो। उसका रूप पता चल गया, उसके गुण पता चल गए, उसका नाम जैसे हम आत्मा और परम आत्मा है, और उसका धाम भी पता चल गया। अब बाकी क्या बचा? काम। हमारा काम क्या देखा था हमने? एज एन एक्टर नीचे आना, और जो मेरे पास क्वालिटीज है उसको एक्टिंग के द्वारा रेडिएट करना, एक्सप्रेस करना, और उसी एक्सप्रेशन में, उसी रेडिएशन में जीवन को एंजॉय करना। लेकिन वो करते 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 करते, कल बता रहे थे ना हम आपको, पानी का स्वधर्म क्या है, लेकिन आंच पे रख दो तो ऐसा ही हुआ ना, लेकिन वापस निकाल दो तो। तो हम आए तो थे उन गुणों के साथ, लेकिन आज उन्हीं गुणों की महसूसता में कितनी डिफिकल्टी है, कितनी डिफिकल्टी है। जबकि पता है कि मेरा स्वधर्म होने के नाते वो मेरे से कभी अलग होने वाले नहीं है, लेकिन उसके ऊपर दूसरा कुछ आ गया है। उसके ऊपर दूसरा कुछ आ गया है, इसको कौन हटाएगा? हम ही हटाएंगे। गाइड कौन करेगा हटाने के लिए? परमात्मा। तो हमारा काम था एज एन एक्टर आके एक्सप्रेस करते करते उसके ऊपर कुछ और चढ़ा लिया। नहीं, सुबह नहा धो के निकले, शाम आते आते धूल मिट्टी चढ़ गई ना, तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर कौन धुलाई कर, कौन गाइड करता है? माँ बाप ही करते हैं, माँ बाप ही करते हैं ना बच्चे को गाइड। तो वो परमात्मा का कर्तव्य कि तुम मेरे बच्चे हो और बच्चे होने के नाते तुम खेलने जाते हो, मैं वहीं बैठा रहता हूं। लेकिन खेल खेल के, खेल खेल के, खेल खेल के जब थक जाते हो, ओरिजिनल को सब कुछ भूल जाते हो, उस समय मेरा कर्तव्य शुरू होता है कि मैं तुम्हें गाइड करूं। जिसको ही हर धर्म में कहा गया, जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है, धर्म की अति ग्लानी होती है, तब तब मैं इस धरती पर आता हूं और आकर के क्या करता हूं? अधर्म का विनाश करता हूं और सत धर्म की स्थापना, शब्द नहीं आता है, पुनः स्थापना। गौर करेंगे इस पर, स्थापना नहीं करने आता है, पुनः स्थापना। इसका मतलब वो थे पहले से ही। तो अब बताओ, ये जो शब्द आता है धर्म और अधर्म, इसके मीनिंग क्या है? धर्म किसे कहते हैं? टंकी होती है ना, पानी की टंकी शहरों में, बाहर में क्या लिखा होता है? सपोज 1,00,000 लीटर, 1,00,000 लीटर धारिता क्षमता। धर्म माना धारण करना, जैसे कहा ना पानी का स्वधर्म शीतलता, माना उसको धारण किए हुए, वो पानी ने शीतलता को धारण किया हुआ है। कल पूछा सूर्य की कोर प्रॉपर्टी गुणधर्म क्या है, बोला प्रकाश और गर्मी, तो क्या है? उसने धारण किया हुआ है। तो धर्म माना जो धारण किया हुआ है, और अधर्म माना बराबर बोला, अधर्म माना भी, देखो अधर्म का फिर से संधि विच्छेद करो, अ प्लस धर्म। हमारे हिंदी भाषा में अ लगाने से अपोजिट हो जाता है ना वर्ड, वर्ड अपोजिट हो जाता। तो धर्म था धारण करना, कौन सी बातें धारण करना? स्वयं की, स्वधर्म, इसलिए कहते स्वधर्म। अब अधर्म माना स्व का अपोजिट, तो स्व में धारण क्या था? प्रेम, उसका अपोजिट धारण की है नहीं की है, किया है नहीं किया है? शांति। स्व का धर्म क्या था? उसका अपोजिट क्या धारण किया है? जैसे पानी ने भी अपोजिट गर्मी धारण कर लिया ना, अपोजिट। तो जो अपोजिट हमने धारण कर लिया है ना स्वयं का, उसका विनाश करने आया है वो। और जो स्व था मेरे पास, इसलिए का पुनः स्थापना। इसलिए देखो कहते हैं एक शिल्पकार एक पत्थर में मूर्ति समाई रहती है, बोलते हैं सिर्फ अनवांटेड अननेसेसरी हिस्सा निकाल दो, मूर्ति तो वही मौजूद है, मूर्ति वही मौजूद है। ऐसे आत्मा में जो गुण हम लेकर उतरे थे वो आज भी मौजूद है, लेकिन अननेसेसरी अनवांटेड उसके ऊपर आ गया है, उसको निकालना। उसको कहा अधर्म का विनाश करना, और वो विनाश हो गया तो वो तो स्थापित है, लेकिन उसका साम्राज्य नहीं था ना, वो था वहां पर दबा होने के कारण, उसका साम्राज्य नहीं था। साम्राज्य इसका था जो ऊपर में था, जिसका जो हम बोलते हैं गुस्सा तो करना चाहिए ना, ऐसे कैसे नहीं, काम थोड़ी बनेगा बिना गुस्से के। तो साम्राज्य इसका है ना, अरे भाई वो मेरे से, हम दोनों एक साथ पढ़ते थे, सब कुछ बराबर था, अब वो मेरे से आगे निकल गई तो मेरे को ईर्ष्या नहीं होगी? होगी, आप होगे मेरी जगह पे, आपको नहीं होगी? कितना जस्टिफाई करते हैं उसको कि ये जो रॉन्ग हमने धारण किया है इट इज राइट। जस्टिफाई करते नहीं करते हम लोग इसको? वही कहा अधर्म, इसको बस निकालना है। वो इसीलिए आता है अधर्म का विनाश करने और सत धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए। तो अधर्म जो वादा किया है उसने कि अधर्म जब बढ़ता है तब मैं आता हूँ, धर्म की जब अति ग्लानी होती है तब मैं आता हूँ, तो अब बताओ संसार पे नजर फेर कर लगता है ये वो समय है? लगता है अधर्म बड़ा है? हाँ लगता है ना, अखबार उठाओ क्या पढ़ने को मिलता है, न्यूज चैनल शुरू नहीं करते, गहरी नींद करके अगर आप उठे ना सुबह, बहुत अच्छा मूड है, लेकिन जैसे ही वो न्यूज चैनल का खोला एक रिमोट कंट्रोल के द्वारा और जैसे ही अखबार से वो अंदर न्यूज गई, अरे वो सुनते हो ये क्या हो गया, मूड क्या हो गया आपका? ये हालत है संसार की, अधर्म बढ़ गया है। अच्छा अगर ये लगता है कि सचमुच वो समय लग रहा है तो अब उसने कहा होना चाहिए, उसका वायदा क्या है कि ऐसे समय पर मैं अवतरित होता हूं, तो कहा होना चाहिए उसको? वैसे तो एड्रेस देख ली, आत्मा का ऊपर घर है तो पिता का भी वही होगा, लेकिन वायदा क्या है? ऐसे समय पर आता हूं, कहां होगा वो? वो आएगा, क्योंकि कहता है आता हूं, आएगा या आ गया? कौन कौन कहते हैं आ गया? सारे हाथ नहीं उठे। अच्छा जो कहते नहीं आया वो हाथ खड़ा करे, नहीं आया। प्रूफ अभी वही तो पूरा सेशन क्या करेंगे बैठ के, प्रूफ ही तो देने वाले हैं। परमात्मा के घर में आकर आप बैठे हो, वो परमात्मा धरा पर आ गया है, बाकी बात रही प्रूफ क्या है। तो चलिए परमात्मा कितने हैं ये बता दो पहले। पक्का पक्का भगवान कितने हैं? ईश्वर कितने हैं? पक्का? कुछ लोग के हाथ उठ रहे, सबके नहीं उठ रहे। भगवान एक है, भगवान एक है, पक्की बात है। बावजूद इसके एक दूसरे से पूछते हैं आप किसको मानते हो? मैं तो इनको मानता हूँ, आप किसको मानते हो? तो जिसको मानते हो वो कौन होता है? जिसको मानते हो वो भगवान होता है या कोई और होता है? भगवान होता है ना, तो सबका अपना अपना अलग अलग हो गया ना भगवान। अभी उसी को आज हम क्लियर करेंगे। देखो वो भगवान एक है, वो सत्य है, ये भी मानते हैं सभी? तो वो एक है, वो सत्य है, बावजूद उसके उसके लिए अनेक बिलीफ सिस्टम। तो ऐसी अनेक बिलीफ सिस्टम है जिसको हम अभी लेकर चलेंगे और देखेंगे कि इसमें से कौन से बिलीफ सिस्टम मेरा विवेक कहता है ठीक लगती है या नहीं लगती है। अभी भी विवेक से ही समझा, आत्मा को समझ लिया तो परमात्मा इजी हो गया? नहीं हो गया। मेरा मन बुद्धि ने क्या कहा, परमात्मा कैसा है? मैं आत्मा ज्योति तो वो भी ज्योति, मैं आत्मा में ये गुण तो उसमें भी वो गुण, लेकिन वो सागर कांस्टेंट, मेरा ये घर तो उसका भी वो घर, और मेरा ये काम तो बच्चा तो उसका काम क्या है, वो परम है ना, ऊंचा है ना हमारे से, तो उसका ही काम है हमको गाइड करना। तो इजी हो गया, परमात्मा का परिचय तो मिल ही गया। लेकिन इतनी सारी जो बिलीफ सिस्टम है उसका हम क्या करें? अगर किसी ने बताया तो उसके पीछे भी तो कोई राज रहा होगा। तो हम क्या करते, बिलीफ सिस्टम बहुत सारी है, कौन कौन सी है? कोई कहेगा प्रकृति ही परमात्मा है, कोई कहेगा आत्मा ही परमात्मा है, कोई कहेगा ब्रह्म ही ईश्वर है, कोई कहेगा कण कण में वो व्यापक है, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम, कहाँ नहीं है वो, कोई कहेगा वो निराकार है, और कोई कहेगा जैसे कहा ना प्रूफ क्या है, हाँ वो परमात्मा नाम की कोई चीज होती ही नहीं, अगर है तो केमिस्ट्री लैब में प्रूफ करके दिखाओ, क्योंकि विज्ञान के जब युग में हम जी रहे हैं, हर चीज क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए। सच में हर चीज प्रूफ हो तब मानते हैं हम। आज हमने देखा आत्मा का लेसन, मन बुद्धि संस्कार है, उसमें देखा बताया आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है। स्कूल में भी हमने पढ़ा था शरीर विज्ञान, कभी उसमें मन दिखाया था? तो फिर कैसे मान लिया, विज्ञान ने तो प्रूफ ही नहीं दिया, लेकिन मानते हो मन है मेरे पास। तो हर चीज ऐसे फिजिकल, क्योंकि फिजिकल चीजों को प्रूफ किया जा सकता है, आत्मा तक चैतन्य शक्ति मेटाफिजिकल है, वो अनुभव का विषय है, और अनुभव जिसने जो किया ना, इस कारण इतनी सारी मान्यताएं चल पड़ी। तो हम क्या करते हैं, जो परस्पर विरोधी बातें हैं ना, उनको ले लेके हम चेक करते जाएंगे। जैसे कहा कि कोई कहता है प्रकृति ही परमात्मा है, ठीक है, लेकिन इसके परस्पर विरोधी बात कोई क्या कहता है, वो चित्रकार, वो गीतकार गीत गाता है, ये कौन चित्रकार है, हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला गगन, बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन, है ना ये गीत पूरा, उसमें उस गीत में क्या है, प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन है, और उस सौंदर्य को देखकर वो गीतकार कहता है इतना सुंदर चित्र बनाने वाला कौन चित्रकार है, है ना? तो इसका मतलब प्रकृति को रचना बता दिया, तो रचने वाला कोई और है, तो प्रकृति ही परमात्मा कहना। रचना और रचयिता तो अलग अलग होते हैं ना, आप रचनाकार हो अपने बच्चों के, वो आपकी रचना है, तो आप और आपका बच्चा एक हो गया क्या, अलग अलग है ना। और फिर परमात्मा के लिए हमने कल पूछा था उनके गुणों के बारे में, सबके मुख से उसके सद्गुण ही निकले, किसी ने भी एक निगेटिव बात नहीं बोली, किसी ने भी नहीं बोली। तो प्रकृति भी भले अपने सौंदर्यता से सुख प्रदान करती है, लेकिन साथ साथ वो दुख भी देती है, देती है नहीं देती है, हाँ, भूचाल आता है, फ्लड आता है, बारिश आती है, हाँ वही। तो प्रकृति में तो दोनों गुण है, वो तो सुख भी देती है तो, लेकिन परमात्मा तो दोनों नहीं देता है ना, तो फिर कैसे कहें प्रकृति ही परमात्मा है? क्या करें इसको, इस मान्यता को साइड करें, साइड में कर देना, काम की नहीं है ना, काम की इन द सेंस, काम की इन द सेंस प्रकृति ही परमात्मा, काम की तो है, हम अपने गुणों को एक्सप्रेस करने के लिए इसी प्रकृति वाले स्टेज में ही तो आते हैं, लेकिन कौन सी बात काम की नहीं है? प्रकृति ही परमात्मा, वो गलत है। ठीक है ना? हम किसी बात को कट नहीं कर रहे, अपने विवेक से समझ रहे मेरा विवेक क्या कह रहा है। मेरा विवेक कहता है आज दिन तक भल में मानती आई प्रकृति ही परमात्मा, पर अब बात मुझे जब मैंने उस पर चिंतन किया लगता है कि ये मेरी अज्ञानता थी, क्योंकि आज दिन तक तो सत्वचन 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 किया है ना, बुद्धि चलाई नहीं कुछ। अच्छा, दूसरा है आत्मा ही परमात्मा है, ये भी एक बिलीफ सिस्टम है। और दूसरी तरफ गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो हम रचना और रचयिता, तो कैसे हो गए एक, कैसे हो गए एक, नहीं हुए ना। हाँ, कुछ हाथ उठा रहे हैं। उसको तो परमात्मा कहते हैं ना, परमात्मा। नहीं, यहाँ पे बात चल रही है आत्मा ही परमात्मा, मतलब मैं खुद को ही समझ लूं कि मैं परमात्मा हूं। यहाँ पे जब आत्मा ही परमात्मा कहते हैं ना, उसकी मीनिंग क्या है? आत्मा समझती है मैं खुद ही, जिसको कहते हैं दूसरे शब्दों में अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि जिसको कहते हैं, कि मैं ही परमात्मा हूं। तो आप कहेंगे मैं ही परमात्मा हूं? नहीं, बात वही तो बात चल रही है, बात वही चल रही है, इसी को लेते आगे कि हम परम पिता परमात्मा जैसे बन सकते हैं, पर मैं कहूं कि मैं खुद परमात्मा हूं, आपका बच्चा आपके तरह गुणों को धारण करके, जैसे आप बहुत बड़े बिजनेसमैन रहे और बच्चे ने भी वो सीखा, आपसे भी बड़ा बिजनेस बन जाएगा वो, लेकिन फिर भी बच्चा बच्चा है, बाप बाप है। तभी कहा परमात्मा कोई एक स्टेटस नहीं है कि बहुत पढ़ाई करके बहुत मेहनत करके उस के ही पद पर हम पहुंच गए हैं, उसके जैसे बन सकते हैं, लेकिन मैं ही परमात्मा बन जाऊं? नहीं। तब कहा आत्मा ही परमात्मा कहना ये भी क्या थी? मेरी अज्ञानता थी। फिर दूसरी बात लोग कई बार कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है, ये भी कहते हैं। अब हमारा विवेक क्या कहता है? अंश कहना माना कि परमात्मा कोई बड़ा सा गोला है और उसके छोटे छोटे टुकड़े हम सब आत्मा, अंश हुआ ना वो तो। और अभी हम देख कर आए आत्मा तो अजर अमर अविनाशी शक्ति है, तो आत्मा अगर अजर अमर अविनाशी है तो परमात्मा भी, फिर उसके टुकड़े होंगे तो कैसे होंगे, कैसे होंगे टुकड़े उसके, नहीं हो सकते ना। इसलिए क्या कहना सही है? आत्मा परमात्मा का अंश कहना सही है या आत्मा परमात्मा का वंश कहना सही है? वंश है, हम वंश है, जिसको ही हमने गाया तुम मात पिता हम बालक तेरे, हम वंश है, आपके वंशज हैं, आपकी संतान है हम। लेकिन फिर लोग दुनिया में क्या कहते हैं? नहीं, जैसे पानी का बुदबुदा पानी से निकला और पानी में समा गया, ऐसे आत्मा भी परमात्मा से निकलती है और उसमें ही विलीन हो जाती है। एग्जाम्पल तो बढ़िया ले लिया कि पानी का बुदबुदा पानी से निकला और पानी में समा गया, बट पानी इज मैटर, पानी इज मैटर, दैट कैन हैपन, पर यहां तो एनर्जी अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इसलिए ये इस केस में नहीं हो सकता। या फिर लोग कहते हैं जैसे पिता और पुत्र, आप जिस बच्चे को जन्म देंगे उसकी देह आपके ही देह से तैयार हुई है ना, तो ऐसे उससे हम तैयार हुए, अगेन इट इज अ मैटर, देह आपकी मैटर है और वो मैटर उसको मिला थोड़ा, पर यहां पे कौन सी बात है? एनर्जी की बात है। जैसे कुम्हार घड़ा बनाएगा, मिट्टी बनाएगा क्या वो? नहीं। तो आप तो घड़ा बना रहे हो, बच्चे को जन्म दे रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो? घड़ा तैयार कर रहे हो, कहीं उसमें आत्मा थोड़ी डाल रहे हो, ठीक है ना? तो उस रीति से भी नहीं हो सकता है। तो आत्मा अलग अस्तित्व रखती है, परमात्मा अलग अस्तित्व रखते हैं, हम आत्मा उसकी संतान है, वो हमारे पिता है, ठीक है बात? तीसरी बात, ब्रह्म ही ईश्वर है। और उसकी परस्पर विरोधी बात क्या गाते हैं? पार ब्रह्म परमेश्वर। अब ब्रह्म आपने समझा होगा सुबह कि आत्माओं का घर क्या है, ब्रह्मलोक परम धाम। क्योंकि ये सृष्टि जहां पर आत्मा रंगमंच पर पार्ट प्ले करने आई है, इसको कहते हैं पंच तत्वों की दुनिया। और पंच तत्वों की जो ये दुनिया बनी है, इससे पार जो दुनिया है वो ब्रह्म तत्व से बनी हुई है, जिसको कहते हैं ब्रह्मलोक। तो वो तत्व, ब्रह्म तत्व तो एक स्थान है रहने का, जैसे पंच तत्वों की दुनिया ये हमारे रहने के लिए है, ऐसे ब्रह्म तत्व भी रहने के लिए है। और जब कहा कि पार ब्रह्म परमेश्वर, उसकी मीनिंग ये है कि वो परमेश्वर जो इस दुनिया से पार ब्रह्म तत्व वाली दुनिया है, वहां का निवासी है। तो जब पार ब्रह्म परमेश्वर का उसकी मीनिंग है, वो ब्रह्म तत्व की दुनिया का निवासी है। और जब कहा ब्रह्म ही ईश्वर है, मन तत्व को कह दिया। दूसरे शब्दों में कहे, सपोज ये मेरा घर है, मैं यहां रहती हूं इस घर में, मैं कहूं ये मैं और ये घर हम एक है, यही हुआ ना इसका मीनिंग। माना ब्रह्म जो रहने का स्थान है, वो और जो रहने वाला है, दोनों को क्या कर दिया? तो कौन सा सही, ब्रह्म ही ईश्वर है या पार ब्रह्म परमेश्वर? ठीक है ना? अब चौथी बात, कण कण में व्यापक है परमात्मा। कण कण में व्यापक है माना कण कण में तो बहुत कुछ है, कचरा है, कूड़ा है, करकट है। एक तरफ से उसको क्या कहा? परम। हमारे घर में भी जब कोई आएगा, हम उसको कौन सा स्थान देंगे? कचरे वाला? अगर सपोज किसी कारण से हम सफाई कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, और अचानक कोई आ गया, तो भी हम क्या करेंगे? रुको रुको, ऐसे ऐसे करेंगे, साफ करके फिर देंगे ना? और उसको क्या बोल रहे हैं हम? कण कण में है। और फिर उसी के ऊपर हमको चलना है, उसी के ऊपर हमको चलना है। घर में एक छोटे बच्चे को भी थोड़ा सा भी, बेटा लग गया आपको? आपस में भी यहां पे किसी को लग जाता क्या कहते हैं? सॉरी सॉरी लग गया। और उसको आप रोनते हुए जा रहे हैं क्या? फिर कोई कहते पंछी में है, कण कण हो गया, क्योंकि सब में बोल दिया ना, कण कण में है, सब में सर्वव्यापी है, पंछी में, पशु में है। आज कोई इंसान अगर कुछ ऐसा काम करता है, लोग कहते तू तो गधा है, गधा, कितना बुरा लगता है। उसको क्या बोलते? गाली बोलते हैं ना। तो परमात्मा को आप पशु पंछी में बोल के क्या बोल रहे हो? सम्मान कर रहे हो उसका? नहीं। फिर कहते हैं चलो हमारे में है, तुझ में, मुझ में, सब में। अगर परमात्मा मेरे अंदर है, कल भी हमने देखा संग का रंग लगे बिना रह नहीं सकता। अगर परमात्मा मेरे अंदर है, कुछ रंग ही नहीं लग रहा है हमको, है एक्टिविटीज परमात्मा जैसी। यहां आने के बाद भी आपने कहा ना कि इस एटमॉस्फेयर में आने के बाद अच्छा लग रहा है, तो इस एटमॉस्फेयर में आने के बाद आप गुस्सा कर लोगे? वो परमात्मा जो यहां बैठा है, जिसकी महिमा हम इतनी करते, उसका रंग ही नहीं लग रहा है हमको, आज पारस और लोहा अग्नि भी रख दो तो लोहे में भी क्या गुण आ जाएगा? लोहे को अग्नि में रख दो तो उसका ताप इसके अंदर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो हमारे में उतना भी रंग नहीं चढ़ा क्या उसका? उसको करुणा का सागर कहते हैं हम, हमारी करुणा कहां जाती है? फिर लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं हमारे अंदर तो है लेकिन वो क्या दबा पड़ा है। चलो वो भी मान ले दबा पड़ा है, तो उसको हमको उठाना पड़ेगा, जागृत करना पड़ेगा, सोया पड़ा है। तो जिस परमात्मा को जागृत करने की ताकत अगर आत्मा के पास है, वो आत्मा क्या हो गई? सुपर परमात्मा। हाँ, उससे ज्यादा शक्तिशाली हो गए ना हम तो। फिर क्यों गाते हो, हाँ इतनी शक्ति देना हमें दाता, शक्ति तो उतनी भी नहीं है और उसको दबा दिया, उसको दबा दिया क्या आपने? ट्रैफिक कंट्रोल। तो हम बात कर रहे थे कि जो हम कहते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर है, क्योंकि गुण उसके दिखाई नहीं दे रहे तो फिर हमने एडिशन किया कि वो दबा पड़ा है, वो सोया पड़ा है, उसको जागृत करना है। तो जो सर्वशक्तिवान है उसको अगर हम जागृत करने लग जाएं, उसको अगर दबा के रखने की ताकत हमारे पास हो जाए तो हम कितने सर्वशक्तिवान हो गए। सोचने की बात है ना। तो हमने परमात्मा को अंदर नहीं दबाया है, परमात्मा हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर परमात्मा के गुण जो पहले ही बोलकर आए आत्मा के ये गुण हैं जो दब गए हैं। क्यों? ऊपर से क्या आ गया? अधर्म आ गया ना, गुस्सा आ गया, ईर्ष्या आ गई, नफरत, वो ऊपर आ गया ना उसके, तो उसमें दब गए नीचे, विवेक हमारा दब गया। लेकिन जब आप शांत रहते हो, कोई भी सिचुएशन आती है, बहुत जब शांत होंगे तो अंदर से दो बात आती है, ये राइट नहीं है, ये राइट है। लेकिन उस राइट वाली आवाज को दबा के जो राइट नहीं है वो करते करते नहीं करते। झूठ बोलना है, सच बोलना है, अंदर बताता है मन। देखो एक होती है ऊपर की लहरें सागर की और एक होता है सागर का तला। ऊपर सागर शोर मचा रहा है लहरों के रूप में, लेकिन तला क्या होता है? उतना ही। और उस शांत तले में क्या होता है? क्या होता है शांत तले में? तला शांत होता है, लेकिन क्या कहते हैं, सागर की गहराई में ही मोती होते हैं कहते हैं, यही कहते हैं। तो कौन से मोती हैं? हम भी इसलिए कहा ना, जब हम शांत होते हैं ना, सच्चाई, वो ज्ञान के मोती अंदर है, विवेक है हमारे पास, उसको हम दबा देते हैं। विवेक है, उसको दबा के रखा है। तो हमारे अंदर परमात्मा नहीं, परमात्मा वाले गुण जरूर है हमारे अंदर। और वो कभी परमात्मा वाले गुण एक्सप्रेस होते ये तो साक्षात देवता दिखता है। और जब वो अधर्म वाला एक्सप्रेस होता है, ये तो साक्षात राक्षस दिखता है। नहीं, क्योंकि दोनों है हमारे पास, हम उसके भी लेकर आए साथ में, लेकिन यहां आने के बाद दूसरे अपने तरीके से भी हमने क्रिएट कर डाले, अक्वायर कर डाले। तो तुझ में मुझ में राम नहीं। और फिर कहते चलो देवी देवताओं की बात निकली थी, है ना, कि देवी देवताएं हैं, ये भगवान है। कितने देवी देवताओं का गायन है? 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। और हमने पहले प्रश्न पूछा था परमात्मा कितने हैं, तो क्या कैलकुलेशन बैठता है? 33 करोड़ इज इक्वल टू 1। वो दिव्य आत्माएं हैं। आत्माएं पुरुषार्थ करके जिस प्रकार का कर्म करेगी वैसा वो टाइटल ले सकती है। इनमें डिविनिटी है, देवता मना देने वाला, वो दे रहे हैं इसलिए उनको देवता कहा। धर्म के कार्य कहते हैं उसको, कहा धर्मात्मा। महान कार्य करते उसको कहा महात्मा, पुण्य का कार्य करते उसको कहा पुण्यात्मा, पाप के कार्य करते उसको कहा पापात्मा। तो कितनी है पापात्मा? एक ही है। पुण्यात्मा एक ही है, देवात्मा एक ही है, धर्मात्मा एक ही है, महात्मा एक ही है। वो तो अनेक है, वो तो अनेक है। स्पष्ट है देवात्माएं अलग, पुण्यात्माएं अलग, धर्मात्माएं अलग, महात्माएं अलग, परमात्मा अलग, वो एक ही है। क्लियर हुआ ये सब? पांचवी बात लेते हैं। कहते परमात्मा निराकार है, न उसका नाम है, न उसका रूप है, न उसकी कोई आकृति है। अगर वो कोई चीज एग्जिस्ट करती है, हो सकता है उसका नाम भी नहीं हो, रूप भी नहीं हो, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। आज हवा भले दिखती नहीं हो, एक चित्रकार उसका भी रूप दिखा देता है ना। साइक्लोन क्या दृश्य दिखाना है वो भी दिखा देता है, शांत प्रकृति का दिखाना है वो भी दिखा देता है। तो परमात्मा में इतने सारे गुण हम पहले ही चर्चा करके आ गए हैं, किसी में तो होल्ड होंगे ना वो गुण। फूल की खुशबू भले ना दिखती हो, लेकिन जिसमें से निकल रही है वो कुछ तो रूप होगा, जिस जहां होल्ड की हुई है वो। तो परमात्मा का रूप है। फिर क्यों कहा निराकार? निराकार शब्द का अपना अर्थ है। जैसे अधर्म का अर्थ क्या बताया हमने? अ प्लस धर्म, धर्म का अपोजिट। निराकार का मतलब है नी प्लस आकार। हम आत्माएं मां के गर्भ में जाकर ये जो दैहिक आकार प्राप्त करते हैं, ऐसा वाला आकार परमात्मा प्राप्त नहीं करते। इसलिए भेंट में कहा गया निराकार, क्योंकि परमात्मा को निर्गुण भी कहते हैं, कहते नहीं कहते हैं। फिर इतने सारे तो गुणों की चर्चा कर डाली हमने, फिर निर्गुण कैसे बोला? तो वो निर्गुण का भी अर्थ है कि जो सुबह बात चल रही थी ना, सतो प्रधान तमो प्रधान रजो प्रधान, ये प्रकृति के जो गुण है सत रज तम, या कहो सतो रजो तमो, या कहो सात्विक राजसिक तामसिक, इन गुणों के प्रभावों से मुक्त है वो, इसलिए उसको कहा निर्गुण। ऐसे नहीं कि उसमें गुण ही नहीं है, गुण तो हम इतनी सारी महिमा कर ही रहे उसकी। तो निराकार शब्द भी भेंट में कहा गया है, निर्गुण शब्द भी भेंट में कहा गया है। तो उस निराकार का रूप है जरूर, तभी तो कहते एक साइड कह दिया नाम नहीं रूप नहीं, और दूसरे साइड कह दिया भगवान का नाम स्मरण करो। नाम ही नहीं तो क्या स्मरण कर रहे हो? रूप ही नहीं है तो किस रूप को देखने के लिए लालायित हो, किस रूप को देखने के लिए लालायित हो? तो एक तरफ रूप दर्शन की तमन्ना, एक तरफ नाम स्मरण की तमन्ना, और दूसरी तरफ उसका तो नाम ही नहीं, उसका तो रूप ही नहीं है। कर रहे हैं ना परस्पर विरोधी बातें कर रहे हैं ना हम लोग। तो निराकार का अर्थ वो नहीं है कि उसका नाम भी नहीं रूप भी नहीं, उसका अर्थ है हमने जो ये दैहिक आकार प्राप्त किया है आत्माओं ने मां के गर्भ में जाकर, वो आकार उसको नहीं है, क्योंकि वो क्या है? अजन्मा है, अव्यक्त है। लेकिन रूप तो है तो, और वो रूप हमने देखा है भारत के अंदर मंदिर है, कौन से प्राचीन मंदिर, शिवालय। क्या स्थापित है उन शिवालयों में? शिव ज्योतिर्लिंगम। कितना स्पष्ट है उसमें, ये लिंग, ये आकृति उसका है जिसका स्वरूप ज्योति है, जिसका नाम शिव है। स्पष्ट है ना? बिल्कुल। तो द्वादश ज्योतिर्लिंगम का गायन, सबसे बड़े से बड़े तीर्थ वही गाए जाते हैं, और उसमें भी आप देखेंगे ये जो पुराने द्वादश ज्योतिर्लिंगम जो स्थापना है मंदिरों की, कहते हैं वहां पर जो शिव ज्योतिर्लिंगम की स्थापना की गई, द्वार से नहीं ऊपर से गुंबज खुला रहता है, वो शिव ज्योतिर्लिंगम की स्थापना की जाती है, उसके बाद वो गुंबज तैयार किया जाता है किसकी यादगार में, वो अवतरित होते हैं। इसलिए देखो शिव के साथ एक नाम आता है शिव शंभु, शंभु मतलब ओरिजिनल वर्ड स्वयंभू, जो स्वयं की ताकत से भू पर प्रकट होता है, भूमि पर, जबकि हम आत्माओं को मां का गर्भ चाहिए होता है, कॉस्ट्यूम पहनना होता है पहले, लेकिन वो स्वयं की ताकत से इस भूमि पर प्रकट होता है, जिसको कहा स्वयंभू। और इसलिए भूगर्भ में कई बार वो ज्योतिर्लिंगम दिखाया जाता है कि इस धरा पर वो स्वयं की ताकत से है, उसको किसी ने क्रिएट नहीं किया, हमारी बॉडी को तो क्रिएट किया ना, मां के गर्भ में क्रिएट हुई ना हमारी बॉडी, तो मां पिता ने क्रिएट किया हमारी बॉडी को, लेकिन उसके लिए कोई नहीं है। तो इसलिए कहा कि शिव ज्योतिर्लिंगम हिंदू धर्म में ज्योति को महानता है, उसकी मान्यता है, उसको पूजते हैं कि वो भगवान जिसका नाम शिव है, जिसका रूप ज्योति है, उसकी हम पूजा कर रहे हैं, उसकी हम भक्ति कर रहे हैं। प्राचीन से प्राचीन मंदिर है ये शिवालय, और इसकी पूजा जिसको हम देवी देवताओं का पहले भी हम करके आए हैं कि वो अनेक है, वो भगवान नहीं हो सकते, दूसरा इन देवी देवताओं को फिर से ले लें, तो श्री राम भी श्री कृष्ण भी उस ज्योतिर्लिंगम की पूजा करते हुए दिखाए गए हैं। तो जरूर पूजा किसकी की जाएगी, जो हमसे ऊंचा होगा ना, ऊंचे की ही की जाती है ना, तो जरूर उनसे भी कोई ऊंचे हैं। और श्री राम और श्री कृष्ण को तो मात पिता दिखाए हैं ना, तो वो तो जन्म लिया है ना। फिर चलो देवियों की अगर बात ले ले, तो देवियों को फिर क्या कहा गया, असुर संहारिणी शिव शक्तियां, उनके मां बाप नहीं दिखाए, लेकिन क्या कहा, असुर संहारिणी शिव शक्ति, माना शिव ने उनको क्रिएट किया है, शिव की शक्ति है वो, तो जिसने क्रिएट किया तो वही भगवान कैसे हो गई फिर, शिव ने तो क्रिएट किया ना, भगवान ने तो उसको क्रिएट किया, तो जो क्रिएट किया वो भगवान कैसे हो गया। तो जिन देवियों को हम कहते आए कि ये भगवान, वो भी क्या है, उसकी रचना है। तो ये हिंदू धर्म के अंदर क्लियर होता है कि भगवान का स्वरूप ज्योति स्वरूप है ना, और यही ज्योति स्वरूप, क्योंकि परमात्मा की पहचान की पांच कसौटी बताते हैं कि परमात्मा का वो स्वरूप जो सर्वधर्म मान्य हो, क्योंकि वो सबका पिता है ना, अकेले हिंदू धर्म वालों का थोड़ी है, वो सबका पिता, तभी तो कहा ना कि हिंदू जिसे भगवान कहता है, मुस्लिम जिसको अल्लाह कहता है, क्रिश्चियन जिसको गॉड कहता है, वो गॉड वो अल्लाह वो ईश्वर एक है या अलग अलग है, तो कहा एक है, तो सबका है वो एक, तो सबने उसको मानना चाहिए उस स्वरूप को। तो देखिए मुस्लिम धर्म के अंदर क्या है, मूर्ति पूजा तो नहीं है वहां, लेकिन वो क्या कहते हैं भगवान के लिए, नूरे इलाही, यही कहते हैं। वहां पर भी जाते हैं जब हज करने, कौन सा पत्थर होता है जिसको चूमने जाते हैं, संगे अस्वद, काबा का पवित्र पत्थर, कौन से आकार का होता है, ओवल शेप का, लिंगाकार का, तो यादगार है कि वहां पर भी परमात्मा के कौन से स्वरूप को मान्यता दी गई है, ज्योति स्वरूप को। क्रिश्चियनिटी के अंदर भी अगर हम जाते हैं तो मूसा को भी जब साक्षात्कार हुआ था तो किसका साक्षात्कार हुआ था, लाइट का, ज्योति का, जिसको जिसका साक्षात्कार करते उसके मुख से उद्गार निकला यहोवा। और फिर क्राइस्ट ने भी उस परमात्मा का किस शब्दों में परिचय दिया, गॉड इज लाइट, आई एम हिज सन। क्राइस्ट ने कभी नहीं बोला कि God is light. God is light. I am sun. इधर सिख धर्म के अंदर श्री गुरु नानक देव जी ने क्या महिमा की उसकी? एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक वाहेगुरु अजूनी सैभम, वो जूनी माना जन्म में नहीं आता है, सत्य नाम वो सत्य है, एक प्रकाश स्वरूप है। इवन पारसियों में भी देख लो कि जब ईरान से वो भारत में आए तो क्या लेकर आए? ज्योति लेकर आए साथ में। उनके मंदिरों को क्या कहते हैं? फायर टेंपल कहते हैं, कि जहां अखंड ज्योति प्रज्वलित है। यहां तक कि महावीर जैन धर्म के अंदर देखें कितने सारे तीर्थंकर हो गए, सब क्या कर रहे हैं? ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। किसका ध्यान करेंगे? अपने से ऊंचे का ना, अपने से ऊंचे का करेंगे ना। तो ध्यान में साक्षात्कार में क्या किया है उन्होंने? किसका साक्षात्कार किया है? ज्योति का, जिसको वो लोग कहते हैं सिद्ध शिलापति। महात्मा बुद्ध, उनमें भी कभी मूर्ति पूजा नहीं है। उन्होंने भी, महात्मा बुद्ध ने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूं। और बौद्ध धर्म के अंदर 3 फुट की दूरी पर, 3 फुट की ऊंचाई पर थाली में एक ओवल शेप का पत्थर रखा होता है, जिसको वो नाम देते चिनकोन सेकी, जिसकी मीनिंग बताते हैं शांति के प्रदाता। उस पर वो लोग फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, कि उस पर कंसंट्रेट करने से हमारे अंदर शांति का संचार होता है, शांति प्रवाहित होती है। और उसने खुद ने भी जब साक्षात्कार किया तो किसका किया? लाइट का ही किया है। तो जो कहा कि परमात्मा का वो स्वरूप जो सर्व धर्म को मान्य हो, तो क्या पता चला कौन सा स्वरूप मान्य है सबको? फिर नाम भले कुछ अलग अलग दे दो, है ना, ज्योति कह दो, जेहोवा कह दो, प्रकाश कह दो, लाइट कह दो, इशारा तो उस तेज की तरफ ही है ना। तो परमात्मा का स्वरूप ज्योति स्वरूप, ये उसका सत्य स्वरूप है जो सर्व धर्मों को मान्य है। परमात्मा की पहचान की ये पहली कसौटी कि वो सर्व धर्म को मान्य होना चाहिए। दूसरी कसौटी सर्वोच्च, और सर्वोच्च को हम पहले ही डिस्क्राइब करके आए, जो सबसे ऊंचा है ना। सर्वोच्च माना सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा माना जिसका कोई मात पिता नहीं, जिसका कोई गुरु नहीं, जिसका कोई टीचर नहीं, जिसका कोई रक्षक नहीं, वो तो हम पहले ही देख कर आए। तो सर्वोच्च हस्ती है वो। और फिर तीसरी बात होती है परमात्मा की पहचान की कसौटी की, कि वो सर्वोपरि। और सर्वोपरि का मतलब होता है कि मनुष्य आत्मा जिन चक्रों में आती है उन चक्रों से वो परे। तो पहले ही देख कर आए हम कि हम चूंकि माँ के गर्भ में जाते हैं इसलिए जन्म मरण के चक्र में आते, जन्म मरण के चक्र में आते हैं तो कर्म और कर्मफल के चक्र में आते हैं, तो सुख दुख के चक्कर में आते हैं, पाप पुण्य के चक्कर में आते हैं, क्योंकि वो आत्मा अजन्मा है, इन सब चक्रों से परे है, तो सर्वोपरि। 3 बातें हो गई कसौटी की, पहली सर्वज्ञ, दूसरा सर्वोच्च, तीसरा सर्वोपरि, और चौथा सर्वज्ञ। पहला सर्वधर्म मान्य था, सॉरी, सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च, सर्वोपरि, और चौथा है सर्वज्ञ। अब सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है? जिसको सबका ज्ञान हो। अब सबका ज्ञान मतलब क्या होता है? आदि मध्य अंत का ज्ञान, उसमें सब आ गया ना, उसमें सब आ गया ना। तो ये सृष्टि पर जो खेल चल रहा है, इसके आदि का भी ज्ञान, इसके मध्य का भी ज्ञान, इसके अंत का भी ज्ञान, इसको कहेंगे सर्वज्ञ। और वही परमात्मा जो कहा ना कि अधर्म के समय आता है, वही आकर इसका ज्ञान देता है। हम कितना भी कहें कि परमात्मा का ये परिचय है, वो परिचय है, गीता में क्लियर शब्दों में आया है, मैं जब धरा पर आता हूँ, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, स्वयं ही अपना परिचय देता हूँ, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मैं खुद ही बताऊंगा। क्योंकि आपका परिचय भी अच्छी से आप ही बता सकते हैं ना, है ना। और बच्चा अगर छोटा है तो उसका परिचय उसका बाप ही बताएगा ना उसको। तो हम चूंकि उसके बच्चे हैं, तो वो अपना भी परिचय देता है, हमारा भी परिचय देता है, हम जिस साइकिल में आए हैं उसका भी परिचय देगा ना, उसको ही तो कहेंगे सर्वज्ञ। तो वो आकर परिचय देता है, तो जरा सर्वज्ञ को चेक कर ले कि उसके पास क्या ज्ञान है। तो वो कैसे आकर अपना परिचय देता है, वो आकर बताता है, हम और आप एक साथ रहते थे, लेकिन तुम बच्चे हो, तुम नीचे आ गए। अभी कौन सा युग चल रहा है, हम कहते हैं कलयुग चल रहा है। ज्ञान वाला उत्तर नहीं देना है यहाँ पे, आंसर हम किससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो नए हैं, कि उनको समझना है ना। अभी तो आप तो समझ के पक्कर आ गए है ना। तो कलयुग में है हम लोग, है ना। तो हाँ जी, नहीं रिवीजन बहुत अच्छी बात, आप बैठे तो इसलिए है, पर आंसर देते समय थोड़ा सा संयम रखो, आंसर नयों से आने दो। बैठे बहुत अच्छी बात है, हम तो आपके हाँ नहीं अच्छा है ना, लेकिन आप जब ऐसे बैठते हो ना, फिर सुनने, ये बताता है कि आपको कितनी लगन है कि इसी बात की गहराई में उतरने की। क्योंकि एक बार सुनने से काफी नहीं होता है ना, फिर अपना मनन चिंतन बार बार करना पड़ता है, जिसको कहते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े। तो यह आपका उमंग दर्शाता है कि आपको इतना उमंग है उन्हीं बातों को फिर सुनने के लिए आप बैठते हो, ताकि मुझे एक एक कुछ एक भी लगता है ना कि मेरा मिस हुआ है, अभी तक क्लियर नहीं हो, क्लियर हो जाए शायद, है ना। तो अभी हम कौन से युग में हैं, कलयुग में भी, कलयुग में भी घोर कलयुग। घोर कलयुग है तो क्या है, क्या है, रिश्ते कैसे हैं, हेल्थ कैसी है, मन कैसा है, बेचैन है, और सारा संसार कैसा दिख रहा है। अभी हमने कहा ना आत्मा बैटरी है, और अभी बैटरी कहां पर पहुंची है, तो डिस्चार्ज, जीरो पे कभी नहीं जाती है, रिचार्जेबल बैटरी है ये। ये बैटरी रिचार्जेबल है, जैसे चंद्रमा के लिए कहते हैं ना, भले ना अमावस आ जाए लेकिन सिल्वर लाइन उस पे रहेगी, ऐसे ये बैटरी कंप्लीट जीरो हो जाए वो पॉसिबल नहीं है। वो जो सिल्वर लाइन रह जाती है, वहीं से उसकी शुरुआत होती है फिर से बढ़ने की। तो हमारे पास थोड़ा चार्ज है, तभी तो कहा आप गहरी नींद करके उठो, आपका मन इतना शांत प्रसन्न रहता है, बात मत पूछो, है अभी भी हमारे पास वो। तो हम क्या बात कर रहे थे कि बैटरी डिस्चार्ज होते समय ये हालत है, है ना। और घोर कलयुग, तो युग कितने होते हैं, चार, कौन कौन से बोलो, कलयुग और घोर कलयुग, इसको हम कहते हैं सुबह, दोपहर, शाम, रात और घोर रात्रि, और घोर रात्रि के बाद सुबह। तो घोर रात्रि में अगर बैटरी डिस्चार्ज है, सुबह में कैसी होगी बैटरी, चार्ज होगी। तो परमात्मा के तीनों कालों का ज्ञान देता है कि बच्चे हम और आप ऊपर रहते थे, तुम बच्चे होने के कारण नीचे उतरे, ऐसा फुल चार्ज बैटरी। तो सृष्टि पर सुबह थी, सतयुग था, अर्थात मन प्रसन्न थे, जो अभी वर्णन किया ना, मन का, हेल्थ का, रिश्तों का, बिल्कुल उसका अपोजिट। लेकिन हुआ क्या, देखो हम आए थे सिर्फ और सिर्फ धर्म लेकर, अधर्म बिल्कुल नहीं था तभी हमारे पास, क्लीन थे ना बिल्कुल। हम उतरे सुख शांति प्रेम आनंद को लेके, इस शरीर को धारण किया और उन सब गुणों को हम रेडिएट कर रहे थे और लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन साथ साथ क्या हो रहा था, जिस घड़ी में ऊपर से आई, आई वॉज 100% चार्ज, बट द मोमेंट आई केम इन साइड दिस बॉडी स्टार्ट रेडिएटिंग, 100% से डाउन होना शुरू हो गया। कैसे? क्योंकि मैं शरीर की एक एक इंद्रियों के द्वारा उसको बाहर रेडिएट कर रही थी, साथ साथ एक एक इंद्रिय का बाहर से अंदर भी ले रही थी। आज भी लेते हैं ना, आंखों से बाहर का अंदर जाता है ना, कानों से बाहर का अंदर जाता है ना, मुख से टेस्ट अंदर जाता है ना, इससे स्पर्श अंदर जाता है ना, वो सब कहाँ जमा होता है? किसी चीज को स्पर्श करके मुझे याद रहता है ना, हाँ फलानी चीज बहुत नरम है, तो ये सब अंदर जा रहा है ना, अंदर वो उसके ऊपर चढ़ता जा रहा है और इसलिए वो 100% से धीरे धीरे, और इसका परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका परसेंटेज धीरे धीरे कम हो रहा है। और ऐसे परमात्मा ने बताया कि धीरे धीरे इसका बढ़ना और इसका धीरे धीरे कम होना। तो जब तुम नीचे आए, फुल अवेयरनेस थी आपको कि तुम, मैं आत्मा हूँ, मेरे ये गुण हैं, मैं एज एन एक्टर रोल प्ले कर रहा हूँ, फुल अवेयरनेस थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रही थी, वो अवेयरनेस कम हो रही थी, उसकी इंटेंसिटी कम हो रही थी, और ये उसके ऊपर जो चढ़ रहा था उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही थी, लेकिन बाहर एक्सप्रेशन में नहीं आई। वो जैसे होता ना कैंसर का सेल, धीरे 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 बढ़ बढ़ के बाद में एक्सप्लोड होता है, ऐसा ही होता है ना। तो ये जो बाहर से अंदर जा, अच्छा ये भी ध्यान रखेंगे, जो बाहर से अंदर जा रहा था ना, वो कोई अधर्म नहीं था। जिसको आज हमने अधर्म क्या कहा, कि गुस्सा ये वो नहीं जा रहा था, लेकिन मैं आत्मा हूं और ये देह है, तो देह के द्वारा हम कांटेक्ट में आ रहे थे ना एक दूसरे, वो सारी बातें अंदर जा रही थी देह वाली। अभी नकारात्मक कुछ भी नहीं अंदर जा रहा था, सिर्फ देह रूपी मिट्टी धूल चढ़ रही थी उसके ऊपर, और वो एक टिपिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद उसकी अवेयरनेस चालू और इसकी अवेयरनेस जीरो पे चली गई। तो कहा दो युग लग गए बच्चों तुमको, सत्युग और त्रेता युग में तुमने अपने गुणों को रेडिएट किया, लेकिन दो युग तक, फिर वो जो बाहर का अंदर गया ना, क्योंकि देह के द्वारा ही तो सब एक्टिंग में आ रहे थे, देह के द्वारा ही तो पहचान हो रही थी ना एक दूसरे की, वो जो अंदर गया वो एक तरीके से धूल मिट्टी का काम कर रहा था, और उसने फिर वो टिपिंग पॉइंट पर पहुंचा त्रेता युग के एंड में आने के बाद, जो द्वापर का आपको अवेयरनेस आ गई, मैं, क्योंकि दो ही शरीर में तो दो ही बात है, मन जीवन में एक शरीर है और एक आत्मा है, अगर आत्मा की अवेयरनेस चली जाएगी तो किसकी अवेयरनेस आएगी? तो तुमको अवेयरनेस आ गई मैं देह हूं, और चूंकि अपनी अवेयरनेस जो मैं आत्मा हूं भूल गए, तो गुणों को भी भूल गए, दब गए ना। तो अब जो पहले इतना सुख एंजॉय कर रहे थे, खुशी, उसमें कमी आई तो क्या करेंगे, उपाय ढूंढेंगे ना, कि मेरे पास इतना खुशी थी, इतना आनंद था, तो कौन सा उपाय, तो दुख में ही तो याद करते हैं ना। तब का दो युगों तक तुम खूब एंजॉय कर रहे थे, इसलिए मेरे को भी याद नहीं किया तुमने, लेकिन जब दुख आया ना, क्योंकि आए तो ऊपर से ही थे ना, तो जब दुख आया तो हमारी वो स्मृति जागी कि मेरा पिता मेरे जैसा ही ज्योति स्वरूप है, उसका नाम शिव है, इसलिए तुमने मंदिर बनाया, तुमको स्मृति थी। ये बता रहा है कि तुमको उस समय स्मृति थी कि मेरा पिता जिसको छोड़कर मैं धरती पर खेलने आया, मेरे जैसा ज्योति स्वरूप है, उसका नाम शिव है, तो चलो उसको फिर से याद करें, उसके साथ फिर से कनेक्शन एस्टेब्लिश करें, तो खोया हुआ सुख वापस आए। तो तुमने उसमें मंदिर बनाने शुरू किए।
तभी का प्राचीन से प्राचीन मंदिर शिवालय। लेकिन चूंकि दिन ब दिन आत्मा की अवेयरनेस तो चली गई, बॉडी की आई, तो फिर धीरे धीरे विकार ने जन्म लिया, धीरे धीरे गुस्सा, धीरे धीरे झूठ बोलना शुरू किया, धीरे धीरे किसी पर थोड़ी सी नफरत आने लगी, धीरे धीरे सब कुछ, धीरे धीरे मतलब जैसे नॉर्मल बुखार, क्या नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है बॉडी का, 98.6, लेकिन अब 99 हो जाए तो बुखार बोलेंगे ना, और 105 बुखार, वो भी बुखार है, वो भी बुखार है, लेकिन अंतर कितना है। तो उस समय वो थोड़ा सा बुखार चालू हुआ था हमारा, समझ में आ रहा है, विकार बहुत थोड़े थोड़े, लेकिन आज की डेट में 105 बुखार है अभी, है ना। तो परमात्मा ने कहा कि कोशिश की तुमने मंदिर बना के कॉन्सेंट्रेट करने की, कि मैं इस पर कॉन्सेंट्रेट करूं, अपने पिता से वो एनर्जी को प्राप्त करूं, लेकिन चूंकि वो अवेयरनेस चली गई और इसकी अवेयरनेस बढ़ते बढ़ते विकार भी उपज गए, तो कॉन्सेंट्रेट करना मुश्किल हो रहा था। तो फिर क्या किए, दूसरे मंदिर बनाए, जिसको क्या कहा, देवालय। देवालय में किसको बिठाते हैं, देवी देवताओं। ये देवी देवताएं जब बनाए थे, याद था कि हमसे, क्योंकि सत्युग और त्रेता में जो वो कर गए वो कौन थे, उनको ही तो देवी देवताएं कह रहे थे ना। तो हमको क्या याद आया, अभी अभी तो हमारे से पहले जो जी रहे थे, कितना जीवन में सुख था, और हमारे से पहले माना हमारे पूर्वज, तो चलो हम अपने पूर्वजों को मंदिर में स्थान दे, ताकि उनके साथ हम कनेक्ट रहे, तो वो खुशियां हमारे जीवन में फिर से लौट कर आए। तो बहुत क्लैरिटी के साथ मंदिर बनाए कि ये हमारे पूर्वजों के मंदिर हैं। लेकिन आज क्या कर दिया हमने, इनको ही भगवान। तो वो पूर्वजों के भी मंदिर भले बनाए, फिर भी क्योंकि विकार तो बढ़ते जा रहे थे, तो वहां हमारे आपस में हम बिखरने लगे। जब नफरत आएगी तो बिखरेंगे या जुड़ेंगे, आपस में नफरत भाव जागेगा तो जुड़ेंगे या डिवाइड होंगे, तो हम बिखरने लगे थे। तो जब हम बिखर रहे थे, तो जैसे माला होती है ना, मोती मोती के साथ पिरोया हुआ, और कितनी अच्छी लगती है माला, और अगर वो उस, वो जो सूत्र जो उनको बांधे हुए है वो टूट जाए तो मड़के क्या हो जाएंगे। तो किसी को तो आता है ना, कितनी अच्छी माला थी, एक सूत्र के टूट जाने से ये बिखर गए हैं, क्यों नहीं फिर से एक सूत्र में बांध दिया जाए, तो कितनी इनकी शोभा फिर से बन जाएगी। तब परमात्मा पिता ने कहा कि जब तुम बिखरने लगे, तो ऊपर से और एक नई आत्मा, जिसको सब कुछ याद है, अभी प्योर है, अभी चक्र में आई नहीं है, तो 100% प्योर है, वो सारे गुण है, उसको याद है, पिता भी उसके घर से अभी निकलेगी, तो वो नीचे आई, जिसको ही धर्म पिता कहा। कि धर्म पिता जब आए, वो धर्म पिता कहलाने के लिए नहीं आए थे, न ही धर्म इस्टैब्लिश करने के लिए आए थे, वो तो धर्म सिखाने आए थे। कौन सा धर्म, जो हमने गवाया, आत्मा में धर्म है ना, प्रेम शांति, वो सिखा। इसलिए देखो, हर धर्म पिता जितने भी हम चर्चा करके आए, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे मोहम्मद पैगंबर हो, चाहे क्राइस्ट हो, चाहे गुरु नानक देव हो, चाहे महावीर जैन हो, चाहे महात्मा बुद्ध हो, जितने भी धर्म पिता है, सबने धर्म माना धारणाएं सिखाई है। सुबह बात कर रहे थे ना हमारे बहन जी, इसने दया सिखाया, इसने प्रेम सिखाया, और उसी धर्म में अभी उसका कोई दर्शन ही नहीं हो रहा है, यही बता रहे थे ना बहन जी। वो वास्तव में उनको धर्म सिखाने आए थे और बताने आए थे, हम उसको बिलोंग करते हैं। उंगली सबने ऐसी की कि वो हमारा पिता है, हम सब आपस में भाई भाई है, तो एक पारिवारिक भावना उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की, कि परिवार में छोटा मोटा कुछ होता भी है, चलो परिवार है ना, छोड़ देते हैं, ऐसे डिवाइड नहीं होते हैं ना। तो पारिवारिक भावना उत्पन्न करने के लिए वो आए थे, हमने जो मूल्य भुला दिए थे वो याद दिलाने के लिए आए थे। हम एक पिता को बिलोंग करते हैं, वो याद दिलाने आए थे, वो एक पिता, उंगली सबकी एक ऊपर है, वो एक है, वो सत्य है, ये बताने आए थे। लेकिन चूंकि किसी ने भी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, लेकिन चूंकि हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो रही थी, वहां तक पहुंचना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था, हमारे लिए तो आप ही भगवान है, हमारे लिए तो आप ही भगवान है। और इसलिए जिसकी तरफ वो इशारा करने आए, हम उससे न जुड़कर हम उनसे जुड़ गए। और उनसे जुड़ने का क्या रिजल्ट आया? जुड़े तो सही हम, रिजल्ट क्या आई? वैल्यूज आई जीवन में? वो जो धर्म सिखाने आए थे वो आए हमारे जीवन में? नहीं है। तब कहा इन्हीं धर्म पिताओं ने, ये सब कहकर गए, धरती पर एक समय ऐसा आएगा जब स्वयं उस पिता परमात्मा को इस धरा पर आना पड़ेगा। उसको अलग अलग शब्दों में किसी ने कहा डूम्स डे, किसी ने कहा जजमेंट डे, किसी ने कहा कयामत का दिन, और किसी ने कहा धर्म अति ग्लानी के समय। बात तो एक ही बोली थी। तो परमात्मा ऐसे समय पर आ चुके हैं, आप उसके घर में आकर बैठे हैं। और वो जो कहा कि सर्वज्ञ की बात चल रही थी ना, तो सर्वज्ञ माना जिसको तीनों कालों का ज्ञान, वही आके तीनों कालों का ज्ञान देता है कि कैसे तुम नीचे उतरे, कैसे तुम्हारा आदिकाल था, फिर कैसे मध्य में तुम्हारा बुखार शुरू हुआ, और अभी अंत में तुम्हारा बुखार कहाँ तक पहुंचा है। और जब बुखार बहुत पहुंच गया हो, अब तो ट्रीटमेंट चाहिए ही चाहिए ना, थोड़ा सा था तो चलता था, है ना, लेकिन अब तो अति पर पहुंच गया है, तो अभी तो डॉक्टर चाहिए। तो सुपर सर्जन, सुपर डॉक्टर आ गया है धरती पर। तो वो सर्वज्ञ है, वो ही आकर, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, इसीलिए उसको तीनों कालों का ज्ञान हो सकता है। जो चक्र के अंदर है उसको नहीं हो सकता, क्योंकि हमको स्मृति और विस्मृति का खेल चल रहा है ना हमारा, हम तो भूल गए ना, बाहर का अंदर डालते गए, जो ओरिजिनल आत्मा थी उसकी अवेयरनेस चली गई हमको। तो हम स्मृति और विस्मृति के खेल में आने के कारण हम अल्पज्ञ हैं, हम सर्वज्ञ नहीं है। वो परमात्मा सर्वज्ञ है। और पांचवी बात बताते हैं, परमात्मा वो जो सर्व गुणों में अनंत हो, जो सर्व शक्तियों में अनंत हो। और उसकी महिमा तो हम देख कर ही है, और वैसे भी ज्योमेट्री के अंदर सबसे ओरिजिनल फिगर कौन सा होता है? पॉइंट, कि जिसकी सहायता से ही लाइन भी बनेगी, सर्कल भी बनेगा, ट्रायंगल भी बनेगा, रेक्टेंगुलर भी बनेगा, पेंटागन भी बनेगा, हेक्सागन भी बनेगा, बिंदु ही नहीं है तो। लेकिन वो बिंदु से, जिस बिंदु से लाइन बनती है, जिसका डायमेंशन होता है, जिसका मेजरमेंट होता है, पर उस बिंदु का कोई डायमेंशन नहीं होता है, उस बिंदु का कोई मेजरमेंट नहीं होता है, और उसको ही फिर कहते हैं इन्फिनेट। उसको ही क्या कहते हैं? इन्फिनेट। तभी का सर्व गुणों में अनंत, कि जो रूप में बिंदु होगा वो ही गुणों में सिंधु होगा। तो क्लियर हुआ, परमात्मा के परिचय की कसौटी की जो पांच बातें हैं, कि परमात्मा वो जो सर्वधर्म मान्य हो, परमात्मा वो जो सर्वोच्च हो, परमात्मा वो जो सर्वोपरि हो, परमात्मा वो जो सर्वज्ञ हो, परमात्मा वो जो सर्व गुणों में अनंत हो। किस पर लागू होगा? होगा प्रकृति पर, होगा आत्मा पर, होगा ब्रह्म पर, होगा कण कण पर, हो गई ना सारी बातें साइड में। तो परमात्मा का होगा देवताओं पर, होगा धर्म पिताओं पर, संत महात्माओं पर, किसी पर भी नहीं। तो आज दिन तक जिन जिन को हम परमात्मा समझते आए, वो हमारी अज्ञानता रही, का ना अल्पज्ञता है ना हमारे अंदर। तो जब वो सर्वज्ञ धरती पर आएगा, वो खुद ही आकर बता सकता है मैं कौन हूं। तो परमात्मा ने आके अपने शब्दों में ये परिचय दिया, बच्चे तुम भी आत्मा ज्योति, मैं भी आत्मा ज्योति, तुम भी गुणवान मैं भी गुणवान, पर चूंकि मैं परम हूँ तो तुम गुणों के स्वरूप, मैं गुणों का सागर। तुम गुण ज्योति, तुम्हारे में भी चमक, मेरे में भी चमक, लेकिन मैं परम ज्योति, मेरी चमक ज्यादा, लेकिन रूप उतना ही रहेगा। पॉइंट, वो पॉइंट बड़ा नहीं होगा। आज व्यक्ति को हम कहते अरे आप तो बहुत बड़े बन गए हो, तो क्या हाइट में बड़े बन जाते हो क्या? गुणों से बड़े बन जाते हो, कर्तव्यों से बड़े बन जाते हो, तो स्वरूप तो वही रहेगा बिल्कुल, पॉइंट ऑफ लाइट वो भी और मैं भी, लेकिन उस अति सूक्ष्म स्वरूप में उसमें बहुत हाई इंटेंसिटी का लाइट, हाई इंटेंसिटी के गुण, और वो ऊपर रहता है, हम बच्चे नीचे आ जाते हैं, और जब नीचे खेल खेल के सब गंवा देते हैं, जब बुखार चढ़ जाता है तो पिता आता है ट्रीटमेंट करने, उस बुखार की दवाई देने, तो दवाई क्या देता है? कर्तव्य, कहा ना उसका कर्तव्य यही है कि बुखार क्यों चढ़ा, क्योंकि वो आत्मा की अवेयरनेस तुमने गवा दी, क्योंकि बाहर का सब अंदर लेते जा रहे थे। तो अब इसीलिए पहला लेसन ब्रह्मा कुमारी इसका क्या है, अपने को देह नहीं आत्मा समझो, क्योंकि बीमारी तभी मिट सकती है जब बीमारी के जड़ को हटाया जाए। तो बीमारी की जड़ क्या थी? अपने आप को देह समझना। तब परमात्मा आकर कहता है अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझ, मेरे आत्मा के जो खुद का स्वधर्म है उसको याद करो, उसको रेडिएट करो। तो वो संस्कार, तो सोच में परिवर्तन आया ना, आर्ट ऑफ थिंकिंग बता रहे थे ना सुबह, अभी तक समझ रहे थे ये मैं हूँ, यही थिंक कर रहे थे, अभी थिंक करना है आई एम दिस सोल, मेरे ये संस्कार ओरिजिनल प्रेम और शांति के। आज तक समझ रही थी गुस्सा करना ही, यही तो संस्कार है मेरा, नहीं, चेंज इन द संस्कार, संस्कार ट्रांसफॉर्मेशन। और जब संस्कारों में परिवर्तन आएगा, संस्कृति में परिवर्तन आएगा। एक समय थी संस्कृति अतिथि देवो भव, आजकल कहते घरों के बाहर वो कुत्ता खड़ा रहता है, बदल गई ना संस्कृति, संसार बदल गया। तो अभी वापस जो पहले वाला संसार था, जो कहा कि रात के बाद तो सुबह आनी है, तो वो रात से सुबह करने आया है। तो सुबह से रात होने में तो लंबा टाइम लगा, लेकिन रात से सुबह होने में थोड़ा टाइम है, और इस थोड़े टाइम में जितना जल्दी हो सके हम अपने संस्कारों में परिवर्तन कर ले, ठीक है? तो अब परमात्मा की छवि, जब परमात्मा नाम उठाते ही कौन सी छवि आएगी सामने, कौन सी छवि आएगी सामने? निराकार ज्योति। लेकिन उसके साथ मेरी फ्रिक्वेंसी मैच हो, उसके लिए जरूरी हूँ पहले मैं भी अपने आप को उस ज्योति स्वरूप में देखूं। तो चलिए थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं अभी। ओम शांति। सब तरफ से अपने ध्यान को हटाकर भ्रुकुटी के बीचों बीच केंद्रित करें। जहां हम तिलक करते हैं वहां केंद्रित करें, और भीतर में देखें अपने आप को, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। एक प्रकाश का पुंज सितारा मैं देह के भीतर जरूर हूँ पर देह से अलग हूँ। ये देह एक गाड़ी है और मैं चैतन्य शक्ति आत्मा इसकी ड्राइवर हूँ। मैं शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति हूँ। मैं वो शक्ति हूँ जो सोच क्रिएट करती है। मैं वो शक्ति हूँ जिसमें फीलिंग होती है। मैं आत्मा चैतन्य शक्ति। मेरा ओरिजिनल संस्कार शांति का है। शांति मेरा स्वधर्म है। आज दिन तक जिस शांति को मैं ढूंढ रही थी वो शांति तो मेरी अपनी निजी पूंजी है। मेरा अपना स्वधर्म है। मेरा अपना स्वभाव है। देखें मुझ आत्मा ज्योति से शांति के वाइब्रेशंस चहुं ओर रेडिएट हो रहे हैं। इस शांति में प्यार भी समाया है। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। देखिए अपने आप को आत्मा ज्योति भ्रुकुटी में चमकती हुई रेडिएट कर रही है शांति और प्यार के प्रकंपन। अपने आप को शांति और प्रेम के प्रकंपनों से श्रृंगारित करके अब मैं आत्मा चलती हूँ अपने परम धाम में। देखें अपने आप को आत्मा ज्योति भ्रुकुटी से निकलकर ऊपर की ओर जा रही है। देखें आत्मा सितारा जगमग जगमग करता हुआ ऊपर जा रहा है खुले स्पेस में और ऊपर जाते जाते सूर्य चांद की दुनिया को भी क्रॉस करके नीले आसमान को भी क्रॉस करके पहुंच गई है आत्मा एक ऐसी दुनिया में जहां चारों तरफ सुनहरे लाल रंग का प्रकाश है। जहां शांति ही शांति है। ये मेरा घर परम धाम है। देखें अपने आप को, चारों ओर जो सुनहरे लाल रंग का प्रकाश है, जो शांति की दुनिया है, उसके बीचों बीच मैं आत्मा ज्योति जगमगा रही हूँ और गहन शांति का अनुभव कर रही हूँ। इसी परम धाम में मेरे पिता भी रहते हैं। देखें मुझ आत्मा के ठीक सम्मुख और एक सितारा चमक रहा है। यही है मेरे परम पिता। जिस शांति को सारा जग ढूंढ रही है, उस शांति का सागर मेरा पिता है। हम दो सितारे, एक आत्मा सितारा और एक परमात्मा सितारा, एक दूसरे के आमने सामने, दो सितारों का सुंदर मिलन कि आत्मा अपने पिता के सानिध्य में है, पिता की सुंदर चमकती हुई छवि को जी भर कर देखे। यही है पिता परमात्मा, यही है पिता का सत्य स्वरूप, यही वो है जिसे सत्यम शिवम सुंदरम कहकर याद करते हैं। उनके सानिध्य में, उनके पवित्र वाइब्रेशंस, उनके शांति के वाइब्रेशंस मुझ आत्मा के भीतर समाते हैं। परमात्मा का ज्ञान जो उन्होंने मुझे स्पष्ट किया है, वो ज्ञान, ये परमात्मा के पवित्र वाइब्रेशन, शांति के वाइब्रेशन मुझे प्रोटेक्शन का अनुभव कराते हैं। मैं पिता परमात्मा की प्रोटेक्शन में हूँ। सारा जग जिसको याद करता है, उसके मैं सम्मुख हूँ, वो मेरा पिता है। आज दिन तक जिसको पाने के लिए कितने सारे जप तप किए, कहाँ नहीं उसको ढूंढा, और कहने में आया उसको पाना मुश्किल है। आज मैं उसके सम्मुख हूँ, मेरे भाग्य के क्या कहने, उस परम हस्ती के सम्मुख जिसको सारी दुनिया याद करती है, सर्वशक्तिवान कहकर उससे शक्ति मांगती है। मैं उसके सम्मुख हूँ, वो मेरा पिता है। उसके सर्व गुणों और शक्तियों पर मेरा अधिकार है। बस उसके सम्मुख उपस्थित होकर उन वाइब्रेशंस को अपने भीतर भरते चलना है। और चूंकि वो मेरा पिता है, कोई भी बात जो मन में है, परेशान करती है, भारी करती है, सब कुछ उसके सामने रखकर हल्के हो जाए। हल्के होकर उसके प्योर वाइब्रेशंस को अंदर भरते चले, यही मुझे शक्ति का एहसास कराता है। शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरे पिता सर्वशक्तिवान और मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान। मुझ में पावर है, मुझ में शक्ति है और यही शक्ति अब काम करेगी मेरी फीलिंग्स को प्योर बनाने में, मेरे शरीर को तंदुरुस्त करने में, मेरे रिश्तों को सुमधुर बनाने में, मेरे संसार को स्वर्ग बनाने में। तो भरते चले परमात्मा के वाइब्रेशंस अपने भीतर, उसकी छवि की अमिट छाप अपने अंदर प्रिंट करते हुए, वाइब्रेशन लेते हुए अब लौट चले उस दुनिया की ओर जो पंच तत्वों की दुनिया है। देखें अपने आप को, मैं आत्मा भरपूर होकर लौट रही हूँ नीचे, चमकता हुआ सितारा देखते चले नीचे उतर रहा है, जगमग जगमग करता हुआ पंच तत्वों की दुनिया में प्रवेश कर गया और नीचे उतरते हुए इस शरीर में भ्रुकुटी सिंहासन पर पुनः आकर विराजमान। देखें मुझ आत्मा से वो परमात्मा के पवित्र वाइब्रेशंस, वो शांति और शक्ति चहुं ओर प्रवाहित हो रही है। ओम शांति शांति शांति।
ओम शांति। आज इंदिरा बहन ने हमको परमात्मा की पहचान कराई। सुबह हमको खुद की पहचान हुई थी कि हम आत्मा हैं, और अभी परमात्मा को कैसे पहचानना, उनकी कसौटी क्या है, उनके गुण क्या हैं, कैसे हमें धारण करने हैं, ये सब गहरी बात उन्होंने एक सादी सीधी और प्यार से हमको समझाई। मैं आप सबकी ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
बहुत सुंदर इंदिरा बहन जी ने कल भी बहुत प्यार से सबको बताया, आज भी समझ में आया सभी को। चलो हाथ उठाओ अपने पिता की पहचान, सवेरे खुद की पहचान और अभी खुदा की पहचान, है ना। संसार रूपी ड्रामा में हम आए थे खेल करने, खेलते 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 यही भूल गए कि हम कौन थे, कहाँ से आए, कहाँ जाना, क्यों आए थे, है ना। तो अब चार युग पूरे हुए, संगम युग चल रहा है, शिव बाबा वापस आए हैं ज्ञान देकर, हमें फिर कहाँ ले जाएंगे, वापस घर ले जाएंगे। ऐसा लगता है कि वापस घर जाना है, कितनों को लगता है कि अब ये साइकिल कंप्लीट होगा, अब घर जाना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं, छोटा बच्चा है ना, जब नहा धोकर फ्रेश होकर आप सुबह उसको खेलने भेज देते हैं, तो एक मिनट घर में नहीं रुकना चाहता है, उस समय उसको क्या चाहिए, फुल ऑफ एनर्जी है तो खेलना चाहता है। जब वो एग्जॉस्ट हो जाता है, रात होती है, फिर घर में आता है तो फिर से वो क्या चाहता है, थक गया ना, अभी क्या चाहता है, घर जाना है, आराम करना है, फ्रेश होना है, ऐसे ही चाहता है ना, आराम करना चाहता है। तो हमने भी कितना साल खेल खेला,